一般就是花个10到20来把你的资金死化了，把它把大部分的钱包就是金子都在搞那种，因为玩的中的家伙都比那冷门店投资过的呢，我搞的嘛，我搞的金毛上面啊，嘿，我这个老虎盘不过了，虎盘，那里个地方太邪了吧？أنا بقدر بنزل في الله يسكن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم فارق الفرق وارزقنا التضاعف وارنا الباطل الباطل وارزقنا الاجتناب This last year I told you, رضي الله عنه ورضي الله عنه والذين جاءوا في نفسي وعلى كلاسي جدا अच्छा तो आखिरी क्लास में हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, तो उससे पहले वाली क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया। तो तलहा रजी अल्लाह के बारे में आखिरी बात क्या हो रही थी तो बताएगा। कुर्बानियां उठाने, सहाबा कराम की तकलीफात उठाने की वजह से उनको मुकाम हासिल हुआ, कि जिसकी वजह से उनके बाद आने वाले जो हैं उनको वो मुकाम हासिल नहीं हो सकता। ये बात सीख थी, तो वो कौन सी वाली तकलीफ थी जिसका के जिक्र हुआ था क्लास के अंदर, तो के वादे के बारे में अंदर एक अंदाज यूजुअल पीपल के अलावा।
हाँ तो बहुत
हाँ, एक एक ये वाला वाक्य बयान किया था, ये आप तो समझ लो यूजुअल लोग हैं, उसका हमेशा ही जवाब देते हैं, जरा अनयूजुअल लोगों से सुनते हैं, अनयूजुअल लोगों में से। तो एक वाक्य उन्होंने बताया कि जब ये मुसलमान हुए थे तो इनको और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके भाई ने, सगे भाई ने तलहा रजी अल्लाह के बांधा था और मारना शुरू कर दिया था, या वो जो नौफिल बिन खुवैलद, ये भी कोई चचा उचा भी था, इसने भी इन दोनों को बांध करके जो है वो मारना शुरू कर दिया था। मुख्तलिफ नाम आते हैं। तो और दूसरा लेकिन जो बिल्कुल आखिरी बात है वो कौन
अच्छा
यानी इमेजिन करें अपनी सगी माँ, अपनी माँ, ठीक है, इनकी अपनी वालिदा ने जो है ना वो उनको मारना शुरू कर दिया था, और उनको जो है वो दलील सारे लोगों के सामने जो है ना वो रुसवा करना शुरू कर दिया था। तो हजरत मसूद बिन हिराश कहते हैं कि जमाने जाहिलियत में मैं सफा और मरवा के दरमियान सही कर रहा था, मैंने एक नौजवान को देखा कि जिसके हाथ रस्सी के जरिए से उसके गले के साथ बंधे हुए थे, यानी ऐसे उसके गले के साथ हाथ बंधे हुए थे यूं करके, और उसके पीछे पीछे एक औरत चल रही थी जो उसको गालियां दे रही थी, बुरे बुरे अल्फाज कह रही थी। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो जवाब मिला कि ये तलहा है जो बेदीन हो गया है और पीछे पीछे उसकी वालिदा चल रही है, और वो उसे लोगों के सामने बेइज्जत कर रही है ताकि ये अपने दीन में वापस आ जाए। तो इस किस्म का टॉर्चर होता था, फिजिकल टॉर्चर भी होता था, इमोशनल टॉर्चर इसको कहते हैं, फिजिकल से ज्यादा ये इमोशनल टॉर्चर था कि आपकी अपनी माँ जो है वो आपके साथ ऐसा करना शुरू कर दे, ठीक है। फिजिकल टॉर्चर तो भाई ने दिया या किसी चचा ने दिया, और इमोशनल टॉर्चर जो है वो अपनी सगी माँ ने दिया। लेकिन मामूली बातें नहीं है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कल हमसे किसी ने सवाल किया, आपके बयान में भी सुनाओ, कि क्या वाकई सहाबा ने कुर्बानियां दी थी, मैंने उनको पता है क्या जवाब दिया। पहले तो जरा जरा थोड़ी डिफरेंट टाइप के जवाब दिए, बाद में जरा उनको बात समझाए। तो पहले जवाब दिए कि क्या कोई टवर से निकल के आपके पास आ गया है एकदम से, उस जमाने का शख्स जिसने आपको आगे बता दिया है कि साहबा ने कुछ कार्रवाइयां नहीं ली, मतलब वेयर डू यू कम अप विद दिस ऑल ऑफ अ सडन, कि क्या वाकई साहबा ने कार्रवाइयां ली, डिड समवन राइज फ्रॉम द डेड, राइट, वो ग्रेव में से निकल कर आपके पास आए और उसने आपको कहा कि साहबा ने कार्रवाइयां ली, आपने जाकर के देखा 2400 ईयर्स अगो, आपने जाकर के देखा कि साहब ने वाकई कार्रवाइयां दी थी या नहीं कार्रवाइयां दी, ठीक है। तो इस तरह की बातें हमारे जहन में क्यों आनी शुरू हो जाती है, शयातीन की वजह से। किसी वजह से शयातीन जो है, ऐसे कौन होता है शयातीन? शैतान मल्टीप्लाई बाई 3 शयातीन। तो शयातीन कौन होते हैं? ये जिन की शक्ल में भी होते हैं और ये इंसानों की शक्ल में भी होते हैं, ठीक है। तो जिन शयातीन वो होते हैं जो नजर नहीं आते और आकर के वसवसे डालते रहते हैं, ठीक है, वसवसे ख्यालात हमारे दिमागों में डालते रहते हैं, तो वो तो किसी के पास भी आ सकते हैं। लेकिन इंसान शयातीन ये नहीं आते किसी के पास, बल्कि हम उनके पास जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं या फिजिकली हम उनके साथ दोस्तियां करते हैं, हम उनके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना और मजे करना शुरू कर देते हैं। अब वो शयातीन जो है वो हमें इस किस्म के आइडियाज हमें हमें वसवसे डालते रहते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला से उनसे हिफाजत मांगनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला से महफूज रखे, और हमें चल के उनके पास नहीं जाना चाहिए, वर्चुअली भी चल के नहीं जाना चाहिए यूट्यूब चैनल और इंटरनेट के ऊपर, और जो है वो फिजिकली भी चल करके ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, वरना ये ऐसे आइडिया जो है ना वो आपके दिमाग में डालेंगे। तो सहाबा की कुर्बानियां ये पढ़ने के बाद का अगला टॉपिक है कि इनका तदय्युन, ठीक है, तदय्युन मतलब बहुत ज्यादा जो है ना वो खुश अखलाकी, इनकी तबीयत में बहुत ज्यादा दीनदारी थी, खुश अखलाकी थी, कि एक दफा ये नमाज पढ़ा रहे थे कुछ लोगों को, ठीक है। तो जब इन्होंने सलाम फेरा ना, तो जैसे मुड़ के जो इमाम होता है वो मुक्तदियों की तरफ मुड़ के बैठ जाता है ना, तो ये मुड़े और लोगों से पूछा कि भाई आप लोग जो हैं मुझसे नाराज तो नहीं है, आप लोग मुझसे नाराज तो नहीं है, आप लोग मुझसे राजी हैं ना। तो सबने जवाब दिया कि जी मतलब कोर्स हम आपसे नाराज क्यों होंगे, हम सब आपसे राजी हैं, फिक्र ना करें। तो लेकिन आप ये बताएं आप ये पूछ क्यों रहे हैं, बड़ा अजीब सा सवाल है कि इमाम साहब एकदम से पूछना शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे याद आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर कोई बंदा किसी कौम की इमामत कराए इस हाल में कि वो लोग जो है ना वो उससे नाराज हो, उससे राजी ना हो, तो उसकी नमाज कबूल नहीं हो, उसकी नमाज कबूल यानी इमाम की नमाज कबूल नहीं हो, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपसे तस्दीक कर लूँ कि भाई आप लोग कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है, अगर आप मुझसे खुश हैं तो फिर मेरी नमाज कबूल हो जाएगी। इतनी फिक्र थी इन ऐसे लोगों को ना, इन लोगों को, फिर इनकी इनका जो इंफाक फी सबीलिल्लाह, इंफाक कहते हैं खर्च करना अल्लाह ताला के रास्ते में, ठीक है। इंफाक को इंफाक क्यों कहते हैं किसी को पता है? इंफाक फी सबीलिल्लाह, खर्च करने के लिए, सदका का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? इनका जवाब दे देंगे, जल्दी से बता दें, तो इंफाक का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर? वक्फ से निकला, नहीं वक्फ से तो नहीं है लफ्ज निकला, वक्फ के अंदर तो वाव आता है, काफ आता है, इनफाक में तो ये भी सर्फ पढ़नी बड़ी जरूरी है, ताकि आप जो है ना वो रूफ असली को आइडेंटिफाई करना सीख, रूफ असली अगर आइडेंटिफाई ना हो तो आप उसके असर तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इसमें हरूफ असली कौन से हैं, ओरिजिनल हरूफ मेरा बोला बताएंगे,
वक्फा
वफ़ा नहीं, वफ़ा तो उन्होंने जी क्या बोलते हैं,
वक्फा
वक़फ़ा नहीं है ना, वक़फ़ा जी नफ़ाक़ा, ठीक है, नफ़ाक़ा नफ़क़, ठीक है, नफ़क़ नून फ़ाक़ा, ये है इसके रूप है असली, ठीक है, इकराम से है ये करमा। तो नफ़क़ कहते हैं सुरंग को, टनल, ठीक है, जैसे मक्का मुकरमा में आप जाते हैं तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी टनल्स होती है ना, तो टनल के अंदर ट्रैफिक इधर सेंटर होती है और फिर चलती रहती है हत्ता कि वो दूसरे एंड से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने खर्च करने के लिए इनफाक का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये नफक की माने होता है इंसान, ठीक है, अगर उसके अल्लाह ताला एक तरफ से उसको दौलत देते हैं, ठीक है, तो गोया कि इंसान जो है वो एक टनल है, उसको एक तरफ से अल्लाह ताला दौलत दे रहे हैं, अब अगर ये दौलत जो अल्लाह ने उसको दी है ये आगे से खर्च होती रहे तो क्या होगा कि पीछे से दौलत की ट्रैफिक और आती रहेगी, ठीक है, ट्रैफिक है दौलत की तरह की, तो ट्रैफिक दौलत की और आती रहेगी, आगे खर्च करते रहो पीछे से और आती रहेगी, लेकिन अगर खर्च ना करें तो फिर क्या होगा, अगर ट्रैफिक नफक से बाहर ना निकले तो क्या होगा, नफक के अंदर सुरंग के अंदर क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, ठीक है। जब ट्रैफिक जाम हो जाएगा तो चले पीछे से ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, लेकिन अब मजीद तो उसके अंदर आ ही नहीं सकती क्योंकि जैम जैम क्रिएट हो गया, जगह खत्म हो जाएगी, मजीद ट्रैफिक अंदर आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो यही मामला जो है वो इंसान के साथ होता है कि जो खर्च नहीं करता ना, तो फिर अल्लाह ताला उसको देना भी छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि वो आगे खर्च नहीं कर रहा ताकि वो ट्रैफिक का फ्लो चलता रहे। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने जो है वो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिसमें कितनी गहराई है, कितनी जगह उसके अंदर हिकमत है इस लफ्ज के इस्तेमाल में। क्या यूट्यूब पे तिलावत सुन सकते हैं? अम्मी सुन सकती हैं, बच्चे नहीं सुन सकते। तिलावत सुनने के लिए कोई और चीज नहीं है आपके पास? अगर किसी और चीज को सुन सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब के अंदर फिर वो एड्स भी आते हैं ना। ठीक है, एक तो उसके अंदर बुराई है कि उसके अंदर एड्स आते हैं और वो बहुत ही गंदे गंदे एड्स भी होते हैं कभी, और दूसरी बात ये होती है कि जब आप यूट्यूब पे जाते हैं कोई चीज सुनने के लिए, तो फिर वो नीचे जो है ना, वो सजेस्टेड वीडियोज उसके अंदर सजेस्टेड वीडियोज आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर जैसे आप तिलावत सुनने गए तो उसमें नीचे फिर बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो कि तिलावत से रिलेटेड होंगी, लेकिन चंद तिलावत वाली के बाद एक जो है ना वो गंदी किस्म की कोई वीडियो होगी, गाने की वीडियो होगी या किसी ड्रामे की वीडियो होगी या किसी और इस किस्म की बेकार किस्म की फजूल किस्म की चीजों की वीडियो होगी। ठीक है, तो अब शैतान जो है ना वो आपसे तिलावत सुनते सुनते एकदम से जाना कि अच्छा ये इस तरह से मैं देखू तो सही, आजकल लोग किस किस्म के गुनाहों में मुबतला है। तो लोगों के गुनाह चेक करने के लिए जरा मैं देखूं तो कि किस किस्म के गुनाह कर रहे हैं उधर, क्या आंसू भी मुबतला हो गया उसके बाद गुनाह के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से इससे जो है वो दूर ही रहना चाहिए। अच्छा, उन्होंने भी जवाब दिया तो हुआ था जो दिया था बात का। अच्छा, तो इनका इंफाक जो है ना बहुत ज्यादा खर्च करते थे। तो हजरत तरफ की बीवी थी, उनका नाम था सादा, सीन से सादा। वो फरमाती है कि एक दफा मैंने देखा तलहा बड़े परेशान है, बड़े मुस्तरब है। मैंने तो बोले क्या हो गया भाई, क्या परेशानी हो गई, क्या मैंने कोई गलत काम कर दिया, मुझे बता दें तो मैं आपसे माफी मांग लूंगी। उन्होंने जवाब दिया, नहीं तुम तो बहुत अच्छी बीवी हो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। मेरे साथ मसला ये है कि मेरे पास इस वक्त जो है ना वो बहुत सारा माल जमा हो गया मेरे पास, अब मैं परेशान हूँ कि मैं अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल भी हूँ कि नहीं, क्योंकि इतना सारा माल इसी दुनिया के अंदर मिल गया, पता नहीं जन्नत में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं। तो वो बीवी भी सादात थी, सादत वाली, नाम भी उन लोगों के ऐसे अच्छे अच्छे होते थे सादत वाली। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप ऐसे करें ना, ये सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त आइडिया दिया, तो उन्होंने बाकी सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, यानी गरीबों में बांट दिया। और फिर सादत मजीद फरमाती है कि एक दफा ना उन्होंने एक दिन में 1 लाख दिरहम सफर, 100,000 दिरहम एक दिन के अंदर उन्होंने सफर कर दिया। और फिर ये अब ये साबिकून अवलून में थे तो ये ऐसा काम कर भी सकते थे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ इनका हाल, ये कह रहे हैं इनकी बीवी कहती है कि इन्होंने जितना था सारा सबका कर दिया। अब इनके पास इतना भी नहीं था कि अब इनका कपड़ा फटा हुआ था, फटा हुआ कपड़ा मैंने, तो इतना भी नहीं था कि कोई नया कपड़ा खरीद करके पहन सके, तो इस वजह से ना उस वक्त जो है मस्जिद नहीं जा सके उस फटे हुए कपड़े की वजह से। तो बाद में जो है उन्होंने उसका इंतजाम किया कि वो मैं उनकी कपड़े की सिलाई करूँ, तब फिर वो मस्जिद गए। तो ये हालत थी इनकी। अब ये जाहिर है ये अबू बकर सिद्दीक के रिश्तेदार भी थे, साबिकून अव्वलून में से, तो ये लोग इस किस्म का काम कर सकते थे, लेकिन हमें बताया इसलिए जा रहा है कि सहाबा का ये मुकाम था। अच्छा, हजरत तल्हा जो है ये मक्का मदीना मुनव्वरा में आए तो इन्होंने जमींदारी भी शुरू कर दी, यानी जमीने वगैरह खरीदनी, वहां पे काश्तकारी वगैरह भी शुरू कर दी। तो एक दफा ना इन्होंने 7 लाख दिरहम, 700,000 दिरहम के बदले अपनी एक जमीन बेची। किसको बेची? वो भी जो है उस्मान गनी अता उनको बेची। तो उस्मान गनी अता ने इनको 700,000 दिरहम दे दिए। अब जो है वो परेशान, क्योंकि इतने सारे पैसे थे मेरे पास आगे, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो इन्होंने वहीं बैठे बैठे वो 700,000 दिरहम जो है ना वो सत्ता कर। ठीक है, अच्छा एक आखिरी बात है इनके इस फयाजी के बारे में कि एक दफा सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन्होंने एक कुआं खरीदा पहाड़ के दामन में ना कहीं ऊपर जा करके, एक बड़ा अच्छा सा कुआं खरीदा, बड़े खुश थे कि मैंने जो है वो कुआं खरीदा। तो इन्होंने सारे मुसलमानों के जो इनके दोस्त अहबाब में मुसलमान थे उन सबसे जो है वो दावत करी, नबी अलैहिस्सलाम की दावत में बड़ी अच्छी दावत करी, बड़ा अच्छा खाना खिलाया। तो नबी अलैहिस्सलाम इतना खुश हुए कि उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तो तलहतुल फयाज, तलहतुल फयाज, तो इनका एक लकब जो है वो था खतुल फयाज, यानी फयाजी करने वाले। फयाजी कहते हैं बहुत खर्च करने वाले, बड़ा दिल खोल कर, बड़े दिल वाले। तलहतुल फयाज भी इनका एक लकब पड़ गया, और तलहतुल खैर भी जो है वो इनका एक लकब था। अच्छा, एक बड़ा और मजे का वाकया इनके बारे में। एक दफा इनके दो बेटे थे, मूसा और ईसा। इन दोनों ने बताया कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम सलाम मस्जिद में बैठे हुए थे कि एक आराबी आया, आराबी देहाती, यानी मदीना मुनव्वरा तो शहर था ना उस जमाने का, ठीक है। तो शहर के बाहर जो गांव देहात में रहने वाले होते थे या डेजर्ट में रहने वाले होते थे, उनको आराबी कहा जाता है, देहाती। तो आराबी आया तो सहाबा कराम जो है ना, इनके दिमागों में उस वक्त जो है ना वो एक क्वेश्चन घूम रहा था कुरान मजीद के बारे में, तफसीर के बारे में, ठीक है। तो ये सहाबा कराम जो थे, ये नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी शदीद करते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत भी बहुत ज्यादा करते थे, और इतनी ज्यादा करते थे कि इनके ऊपर ना नबी अलैहिस्सलाम का एक एक रोब होता था। तो अक्सर ये सवाल पूछने से भी जो है ना उस रोब की वजह से रुक जाते थे, खामोश बैठे रहते थे। अक्सर आपने देखा होगा हजरत जी से मिलने के लिए जाते हैं ना, तो अक्सर लोग तो खामोश बैठे होते हैं, हालांकि हजार सवाल होते थे इनके अंदर, लेकिन हिम्मत नहीं हुई होती कि कोई सवाल पूछे उनसे। तो इस तरह का रोब होता है, तो सहाबा कराम अक्सर जो है ना उस रोब की वजह से पूछते नहीं थे। तो वो फिर किसी आराबी का इंतजार करते थे कि कोई आराबी आए, और अराबी लोग जो थे ना ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के, रेंट के वो तो रगेड किस्म के लोग होते थे, सहरा में रहने वाले। तो वो आते थे और बिल्कुल बगैर कोई परवाह किए मेरे नबी सलाम सवाल करने शुरू हो जाते। तो इस वजह से ना सहाबा फरमाते हैं कि हम किसी अराबी के आने का इंतजार किया करते थे कि अराबी आए, नबी अलैहिस्सलाम से सवाल करे, तो नबी अलैहिस्सलाम उसका जवाब दें और हमें भी उसका इल्म हासिल हो जाए, ठीक है। तो अब ये अराबी साहब आए हुए थे, तो लेकिन इनका कोई मूड नहीं लग रहा था सवाल करने का। तो सहाबा के बड़ा मूड था, एक सवाल था उनके जहन में। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब के अंदर फरमाते हैं ना, मिनल मुमिनीना रिजाल, ईमान वालों में कुछ ऐसे मर्द हैं, सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, कि जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ जो वादा किया था ना उसको सच्चा कर दिखाया, ठीक है, उसको सच्चा कर दिखाया। फमिनहुम मन कदा नहबहु मैं यंतजिर, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना नजराना पूरा कर दिया, ठीक है, यानी शहादत नोश कर ली और उन्होंने शहादत उनको मिल गई, उन्होंने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी, ठीक है। और कुछ उनमें से ऐसे हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिले शहादत का और वो शहीद हो जाए अल्लाह ताला के रास्ते, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना वो सहाबा के दिमाग में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि अल्लाह ताला ने जो है ना ये दो दफा ये बात जो करी ना कि रिजालुन सदकु मा आहदुल्लाह अलैहि, कि रिजाल ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला से अपना वादा पूरा कर दिया, तो ठीक है भाई वो शहीद हो गए, उन्होंने अल्लाह से वादा पूरा कर दिया। लेकिन फिर अल्लाह ताला दोबारा फरमा रहे हैं, तो मिनहुम मन कवा नहबहु, ठीक है, दोबारा से बात फरमा रहे हैं कि उनमें से वो हैं जो अभी इंतजार में नहीं, वो हैं जिन्होंने अपना नजरान पूरा कर दिया। तो आप सहाबा सोच रहे हैं ये दोबारा अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं ना, ये कोई अलग बंदा है लगता है, ये कौन है, ठीक है। तो सहाबा ने इस आराबी को पकड़ा, उससे कहा कि तुम जाकर के जरा नबी अलैहिस्सलाम से पूछ करके तो आओ कि सलहु अमन कवा नहबहु, कि आप उनसे जाकर के पूछिए कि ये मन कवा नहबहु कौन है, इसके बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। तो वो सहाबी जो थे ना, वो आराबी जो थे, वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा कि भाई कौन है। फसअलहुल आराबी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, फअरदहु, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इग्नोर किया, जवाब नहीं दिया उसके सवाल का। तो वो आराबी थे, तो उन्होंने तुम सअलहु फअरदहु, उन्होंने फिर सवाल किया, तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने फिर एराज किया, यानी सवाल का जवाब नहीं दिया। एराज करने का मतलब ये भी होता है मुंह फेर लिया या बस इग्नोर किया, जवाब नहीं दिया सवाल का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो तीसरी मरतबा उन्होंने सवाल किया नबी अलैहिस्सलाम ने, फिर एराज किया यानी जवाब नहीं दिया। तुम इन्नी इत्तला'तु मिन बाब المسجد वो अलैया सियाबुन खुबरुन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हजरत तलहा फरमाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात अपने बेटों को बताई थी, बेटों ने फिर आगे बताई मुसलमानों को, ठीक है। तो ये फिर मुहद्दिसीन ने सुना तिर्मिजी के अंदर इस वाली हदीस को रिकॉर्ड किया। तो तलहा फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, ठीक है, और मेरे ऊपर जो है ना मैंने सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ, ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ। फलम्मा रानी रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त फिर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे देखा, ठीक है, मस्जिद में तुलू होते हुए, मैंने मस्जिद में दाखिल होते हुए मुझे देखा ना, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, काला अयना साइलु अम्मन कदा नहबहु, वो सवाल करने वाला कहाँ है जो पूछ रहा था कि वो कौन है कि जिसने अपना वादा पूरा कर दिया। काल अलआराबी अना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने वो सवाल किया था। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه, ये है जिसने अपना वादा पूरा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब तलहा रहता तो शहीद हो ही नहीं थे, तो उन्होंने अपना वादा कैसे पूरा कर दिया, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तलहा के बारे में फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला शहीद यमशी अला वजह अर्ज, कि अगर कोई चाहता है कि वो किसी जमीन पर चलते हुए शहीद को देखे, जमीन पर चलते हुए शहीद को देखे, तो यंतुर इला तलहा इब्न अब्दुल्लाह उबैदुल्लाह, तो वो तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को देखे, ठीक है। यानी ये शहीद हुए नहीं है, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी शहीद होने की, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने इनकी मौत नहीं रखी, लिखी हुई थी, अभी भी जिंदा है, जमीन पे चलते फिरते हैं, लेकिन इनको शहादत का मकाम मिल चुका, लेकिन और वाकई आखिर में फिर वाकई शहीद भी हो गए, ठीक है। तो कैसे इनको ये मुकाम मिला, किसी को पता है तलहा रहता है इनको ये मुकाम कैसे मिला? अच्छा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास के अंदर हम ये बात करते हैं, मुझे शायद याद पड़ता है ये किसी सराह के अंदर ये वाली क्लास में, इसके अंदर ये वाली वाकई बता देंगे, बराबरी गज़वाए ओहद की वजह से, ठीक है। गज़वाए ओहद में तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ द मैन ऑफ द डे, ठीक है ना, ही वाज़ द मैन ऑफ द डे, वो मैन ऑफ द मैच वाला लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो कुछ लोग होते थे जिनको के जिन्होंने ना फलाने साहबी मैन ऑफ द डे, जैसे हजरत अली रतान कौन से मैन ऑफ द डे थे, डे के मैन थे, खैबर के, खैबर के मैन ऑफ द डे कौन थे, हजरत अली अल्लाह, ठीक है। हिजरत के मैन ऑफ द इवेंट कौन थे, हिजरत मदीना के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, ठीक है। आका तेरी मेराज के तू लौहे कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रजी की मेराज क्या थी, वो हिजरत का सफर, अगरचे वो 3 दिन पर मुश्तमिल था, लेकिन इट वॉज एन इवेंट, एंड अबू बकर सिद्दीक वॉज मैन ऑफ दैट इवेंट, क्योंकि ये उनकी मेराज थी कि नबी अलैहिस्सलाम के कदमों तक उनको ऐसी रसाई मिली जो कि किसी और को नहीं मिली। तो बताया था ना कि ये हजरत जी ने अपने बयान में वाले शेर पढ़ा था, तो हमारी मुलाकात हुई वो मदीना मुनव्वरा में जबल जी से, इस वाली क्लास के बाद, इस क्लास में आपने वही वाला शेर सुनाया था, तो जी मैंने ये शेर सुना कि जी मुझे आपका वो शेर याद आ गया, अभी बच्चों को जो है ना वो हिजरत मदीना वाली क्लास पढ़ा करके आ रहे हैं, तो जी ने सुना खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो हमारे मुआविया भाई आए थे ना अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर, मुआविया साहब, तो वो मुझे बताने लगे थोड़ी देर के बाद कि मैं जब आप लोग सब चले गए ना, तो मैं जी के पास गया और उनको शौक है कुछ तरह के काम करने का, मैंने कहा जी मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए, उन्होंने ऑटोग्राफ होकर की, अर्जी जी मुझे ऑटोग्राफ दे दिए, तो अर्जी ने उस ऑटोग्राफ बुक के ऊपर एग्जैक्टली यही वाला शेर लिखे थे, बोलते कहते मुझे आपने शेर अर्जी को सुनाया था, अर्जी ने वही शेर लिखे थे मुझे, यानी हैज बीन थिंकिंग अबाउट, ठीक है, तो वही लिखे थे उनको दे दिया ऑटोग्राफ। तो जो है वो बहुत के दिन के चैंपियन इस तरह से बने कि बकायदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने फरमाया कि तनख्वाह जो है ना ये तो बहुत जो है तनख्वाह का मखसूस दिन, और उमर फारूक रजी ने फरमाया कि साहिब ओहदी तलहा, ओहद के जो साहिब थे ना वो तो तलहा थे। कैसे कि जब आपको पता है कि वो जो जबले रुमात के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने 50 तीरंदाजों को स्टेशन किया था कि तुमने यहीं पे रहना है और यहां से तुमने किसी सूरत नहीं हटना है, चाहे जानवर आए और हमें खाना शुरू कर दे, इतना बुरा मामला भी हो जाए ना तुमने यहां से नहीं हटना, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला हमें सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं बहुत सारी बातें। तो हुआ ये कि मुसलमानों को फतह हो गई शुरू में, और फिर मुसलमानों ने जो है वो नीचे जो लड़ाई हो रही थी तो वो फतह हो गई, काफिर भागना शुरू हो गए, मुसलमानों ने जो वहां मौजूद थे उन्होंने जो है माल गनीमत वगैरह जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब ये लोग जो है यहाँ पे पहाड़ी पे खड़े होकर के देख रहे हैं कि अभी फतह हो गई है, दुश्मन भाग गया है, और ये माल गनीमत इकट्ठा करेंगे, बस इट्स ओवर, ठीक है। तो अब जो है ना इनमें नबी अलैहिस्सलाम ने एक खास बात किया और मजीद एक और काम क्या किया, खाली ये कह के नहीं गए थे कि तुमने यहां से नहीं हटना, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनमें एक अमीर भी मुकर्रर कर दिया, इनका एक अमीर, इनका एक लीडर भी मुकर्रर कर दिया था, ठीक है। तो लीडर डिसाइड करता है कि भाई हमने क्या करना, व्हाट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट मूव, ठीक है। तो अब लोगों ने कहना शुरू किया लीडर साहब को, बस खत्म हो गया, अब चले हम भी जाकर के माली गनीमत वगैरह इकट्ठा करने में अपने साथियों की मदद करते हैं। तकसीम तो नबी अलैहिस्सलाम ने करनी है, ये कोई लालच की वजह से नहीं गए थे कि माली गनीमत हमें नहीं मिलेगा, वो भाई मिलना तो किसी को भी नहीं था, क्योंकि माली गनीमत तो बाद में तकसीम होता है, वो नबी अलैहिस्सलाम ने तकसीम करना था, तो लालच का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। गए थे बस खत्म हो गया यार, बस अपना इकट्ठे करने में हम भी अपना जरा चिपिन कर लेते हैं अपना, राइट। लेकिन अमीर ने कहा कि नहीं, अमीर भी तो नबी अलैहिस्सलाम बनाते तो देख देख करके बनाते थे ना कि अभी ये ज्यादा अकलमंद है, ये ज्यादा शुभाशूर है, ये ज्यादा जो है वो बात मानने वाला है, तो उसको अमीर बना दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप सरसम फरमा के गए यहां से हमने नहीं डाला, लेकिन आउट ऑफ 50 मेरे ख्याल में 45 के करीब जो थे ना उन्होंने कहा नहीं बस हो गया ना, बस अब चलो खत्म करो ना, बस अब तो हो गया। चार पांच जो है वो अमीर के साथ ही वहां पे रहे, वो नहीं गए और अमीर साहब नहीं गए, ये बाकी सारे के सारे जो है वो चले गए। और उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे उनके दिल में ये बात, ये आइडिया डाल दिया था कि वो अपने घोड़ों वाले खसूसी लश्कर को लेकर के पीछे से, ठीक है, उन्होंने देख लिया, दूर से देख लिया कि ये लोग जो है ना वो उतर गए, वो अपने लश्कर को घुमा करके पीछे से लेकर के आए और घोड़ों के साथ ही ऊपर चढ़ करके उन्होंने चार पांच को तो खत्म कर दिया, उधर ही शहीद कर दिया ना। और फिर वो पल पड़े मुसलमानों के ऊपर जो कि इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि पीछे से दुश्मन उनके ऊपर हमला हो रहा है, वो तो अपने हथियार हथियार छोड़ करके अब जो है माल गनीमत इकट्ठा करने में लग गए। अब तो जो केओस फैला है, जो अफरा तफरी फैली है, अब वो जान बचाने का मसला आ गया ना, तो अब जिसकी जो समझ में आ रही है वो उधर भाग रहा है, ठीक है। तो लोग इधर उधर हो गए, नबी अलैहिस्सलाम पीछे अपने जो आपसे सुन का एक स्टेशन होता था, जैसे कि अमीर का जो होता है अमीर लश्कर पर वो एक बाकायदा उनका मुकाम होता है, खेमा वगैरह लगा दिया जाता है, नबी अलैहिस्सलाम वहां थे। अब इन लोगों को पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलाम इनके जो प्रॉफिट है ना वो तो वहां पर है, इन्होंने वहां पर रोक दिया नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए। तो उस वक्त फरमाते हैं कि सिर्फ एक तलहा रज़ियल्लाहु वहां पे रह गए थे जो कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ, तो इतने सारे काफिर जो है वो आकर के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एक साथ अटैक कर रहे थे, इन तलहा रज़ियल्लाहु ओनली वन डिफेंडिंग नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो अब हर किस्म के हथियार, तीर, नेजे, तलवार और तलहा बिल्कुल, यानी अब पूरा का पूरा उनकी जो जिसम था ना वो गोया कि शील्ड बन गया नबी अलैहिस्सलाम के साथ, तीर आ रहे हैं वो अपने हाथों के ऊपर रोक, तीरों हाथों के ऊपर रोक रहे हैं, उनको नेजों के जख्म लग रहे हैं लेकिन वो हट नहीं रहे, अल्लाह ताला की कुदरत के शहीद भी के, ठीक है। हत्ता कि इतने जख्म लगे, इतने जख्म लगे कि ये बेहोश होकर के गिर पड़े, लेकिन उस वक्त तक दूसरे मुसलमान भी आना शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले फिर अबू बकर सिद्दीक आता है, उन्होंने इनकी जगह संभाली, उन्होंने वो सब डिफेंड करना शुरू किया, फिर बाद में दूसरे मुसलमान भी आना शुरू हो गए। तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक को फरमाया कि जाओ जाकर के तलहा की खबर, तो तलहा था ना गिरे थे और एक गड्ढे के अंदर जाके गिर गए, जख्मी हो गए, ठीक ठीक है, तो उन्होंने जाकर के फरमाया कि मैंने तलहा के जिस्म को देखा तो 70 से ज्यादा उनके ऊपर जो है ना जख्म आए, यानी बहुत बड़ी तादाद में जख्म उनको लगे हुए थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जान की हिफाजत उन्होंने ऐसे कर ली, ठीक है, अपनी जान को कुर्बान करके। तो नबी अलैहिस्सलाम इतने खुश हुए कि बाद में हजरत हसन बिन साबित को फरमाया कि तुम तलहा की शान में कसीदा लिखो, तलहा की शान में तुम शायरी लिखो। नबी फरमा रहे हैं, तो हसन बिन साबित ने उनकी शान में फिर बकायदा सीधे लिखे, और नबी ने इसी की वजह से उनको फिर जमीन पर चलता फिरता शहीद का भी मुकाम था। चैंपियन ऑफ द बैटल ऑफ बदर, क्या नहीं मिस हो गया तो बात करी थी, सोचा भी था लेकिन सैयद हमजा भी हयात थे, और ऐसा देखा जो तीन थे उनमें, भी थे, हजार भी थे, और तीसरे जो थे वो तो बाद में शहीद हो गए थे। लेकिन ऐसा हमने कोई बात करी नहीं थी कि बदर के मैन ऑफ द, हाँ मेरे जहन में भी ये आ रहा था इससे पहले जब मैं तो तुम यहाँ से पहले सोच रहा था कि वो जो दो छोटे बच्चे थे जिन्होंने जाकर के अबू जहल को जो है वो कतल किया था, लेकिन अबू जहल का सर जो है पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद था। लेकिन मेरे मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने मैन ऑफ द टूर्नामेंट वगैरह के डिस्कशन जो है वो बदल के पहुंचे पढ़ते। अच्छा, बदर के मौके पे जो है ना, असल में बदर की लड़ाई जो थी ना बड़ी यूनिक लड़ाई, ये बड़ी स्पेशल लड़ाई, ये एक्चुअली लड़ाई थी नहीं, ये लड़ाई थी नहीं, ठीक है, क्योंकि मुसलमान लड़ाई की नीयत से ही नहीं गए थे, और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों ने कोई खास लड़ाई करी नहीं। किसने लड़ाई करी? फरिश्तों ने लड़ाई करी, ठीक है। तो बदर जो है ना ये तो मुआजजा था, अल्लाह ताला वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व, अल्लाह ताला अपने काम फरिश्तों से करवाते हैं, पता नहीं बेअदबी ना हो जाए, मैं तो यानी हस्ती ऑफ द इवेंट फॉर अल्लाह सुभान व तआला, ठीक है ना। बदर किसका डे था? बदर जो है ना वो अल्लाह का, ठीक है, अल्लाह ने बस सारा मामला अपने हाथ में रखा होता, ठीक है। अच्छा, कितना टाइम रह गया सब पास? अच्छा, इनको माशाल्लाह ताजर भी थे, और जो है वो जमींदार भी थे, और फयाज भी थे, और जो है वो ऐसे बहादुर भी थे कि अपनी जान जोखिम में डाल दी नबी सलाम के लिए, और दीन की भी इनको बड़ी फिक्र थी। तो इनको एक और भी कि भाई शरी मसाइल की भी इनको फिक्र थी, नबी अलैहिस्सलाम से पूछते रहते थे। तो एक दफा इन्होंने हजरत नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कई मरतबा नमाज पढ़ रहे होते हैं तो लोग हमारे आगे से गुजर जाते हैं, तो इससे हमारी नमाज में कोई हर्ज तो नहीं होता, लोग हमारे सामने से गुजर जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ा करो ना तो अपने सामने जो ऊंट का कुजावा होता है ना, ऊंट का कुजावा यानी ऊंट के ऊपर बैठने के लिए एक सीट लगाई जाती है, देखा होगा आपने कभी यहाँ पर भी, या कभी आप वगैरह बैठा हो, तो वो जो सीट होती है ना, तो उस सीट के ऊपर एक रेस्टिंग के लिए, जैसे ये सोफे के पीछे एक रेस्टिंग के लिए है ना ये, तो वो कुजावे के पीछे वाली जो एक लकड़ी लगा देते थे ताकि वो आराम से जरा इतमान से उसका जो राइडर है वो बैठ सके। तो वो जिस तरह की वो लकड़ी होती थी तो उस तरह की किसी चीज को तुम अपने सामने रख दिया करो, ये तुम्हारा सुथरा बन जाएगा। अब उसके पीछे से कोई गुजरे ना तो तुम्हारी नमाज में कोई हर्ज नहीं, और उस गुजरने वाले के लिए भी कोई हर्ज, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर बिल्कुल उसी शेप की लकड़ी रखी हुई होती है, ठीक है, बिल्कुल इसी शेप की, जैसे कि कोई टेक लगा के उसके ऊपर बैठ जाए, राइट। तो वो शायद उन्होंने जो बनाई है वो इसी हदीस मुबारक की रोशनी में बनाई है, और वो सामने रख देते हैं जब वो दूसरी जमात, यहाँ तो दूसरी तीसरी चौथी छठी जमातें चलती रहती हैं, तो वो उसके लिए फिर सुपरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह वाला हो सकता है उसका सारा सवाब हजरत तलाह को पहुंच रहा हो, कह रहे हैं आप। 6 million. I would say 6 million, but that probably 6 million. आज के यार
हमारे पास की वैल्यू तो कभी क्या होती है, लेकिन जो 1 लाख जो उन्होंने 1 दिन में सस्ता किया वो 1 मिलियन रुपया, 1 दिन में सस्ता 15 लाख रुपया।
15,000 लाख रियाल एक दिन में चलते हैं, ये आज के दिरहम के हिसाब से आते हैं क्या? अच्छा
7 लाख की नहीं भाई, 7 लाख 10 मिलियन रियाल उन्होंने
वो जो कहते हैं ना कि दीन पे चलोगे तो खाओगे कहाँ से, दीन पे चलोगे तो खाओगे कहाँ से, भूखे नंगे, और जो है ना वो तुम्हें ना कपड़े मिलेंगे ना तुम्हें ये मिलेंगे ना तुम्हें वो मिलेंगे। अल्लाह ताला ने जो अमीर सहाबा थे उनको दिया, इतना दिया कि एक दिन में जाए वो 15 लाख रियाल जो है वो सबका कर दें और फिर और आ जाए। ऐसा नहीं कि उसके बाद जो है वो कल्लाश बैठे हुए भीख मांग रहे हैं बैठ करके, ऐसा तो नहीं हुआ कि जो था सब सबका कर दिया बाद में भीख मांग रहे, नहीं ये तो उनका चलता रहा चलता रहा, अल्लाह ताला देते रहे देते रहे। अच्छा जो गरीब सहाबा थे जिनके ऊपर ये सदका करते थे तो वो बैठ करके भीख मांगते थे, उनको भी अल्लाह ताला पहुंचा रहे होते थे ना, तलहा दान को दिया तलहा दान ने उन्हें दिया, तो ये कौन दे रहा है? अल्लाह ताला पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये शैतान, सिर्फ और सिर्फ शैतान का, दीनदार बन जाओगे तो खाओगे किधर से, दीन की खातिर अगर तुम जो है, अब हमारे एक दोस्त हैं, मैं मुझे वाकई भी सुना भी छोड़ूंगा आपको, हमारे एक दोस्त हैं बराबर वाले घर में रहते थे, अब वो कराची में हो गए, काफी साल हो गए उनको कराची में हो। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना वो अपने बच्चों को, जो हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है ना दामद बरकातहू, राइट, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह, उनका जो मदरसा है ना दारुलूम कराची, ठीक है, दारुलूम कराची ने अपने कैंपस पे हिरा फाउंडेशन के नाम से एक स्कूल बनाया। ठीक है, और स्कूल के अंदर जो है वो जाहिर है अभी तो करिकुलम डेवलप वो लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि अपना ही करिकुलम डेवलप कर, लेकिन अभी नहीं है तो वो भाई ओ लेवल्स का करिकुलम पढ़ा देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमारे फरहान भाई ने अपने बच्चों को, बेटा बेटी दोनों को हिरा फाउंडेशन स्कूल के अंदर दाखिल करा दिया कि भाई वहां पे माशाल्लाह उलमा का माहौल है, मदरसे का माहौल है, नेको का एक, तो मेरे बच्चे यहाँ पे ओ लेवल्स कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब ओ लेवल्स कर लिया ना उन्होंने, तो अब उसके बाद जो है ना वो बहुत सारे लोग जो हैं जो उनकी हमारे हमजा भाई की क्लास में होते थे, तो उसके बाद जो है ना वो उनकी अम्मी अबू जो है वो, यार यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, मौलवियों का बनाया हुआ स्कूल है, ओ लेवल तो चलो हो गया लेकिन इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, तो ए लेवल हम इधर से नहीं करवाएं, ठीक है, हम इधर से ए लेवल नहीं कर, सारे छोड़ के चले गए सिवाय 3 लड़कों के, एक हमजा साहब और 2 और लड़के, वो रह गए, बाकी सब सबको निकाल दिया। किस वजह से निकाला? यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है ना, और निकाल के फिर किधर डाला? वही बेहया गंदे संदे कॉलेजेस के अंदर, जहां पर के ऐसा लिबास वहां की लड़कियां पहनती हैं, मैं आपको बता दिया कोई तो स्विमिंग करने के लिए आएगी, ऐसा लिबास पहनती कराची शहर के अंदर, उन कॉलेजेस के अंदर क्यों क्यों डाला? अच्छी पढ़ाई होगी वहां पे। ठीक है, अल्लाह जजाए खैर दे हमारे दोस्त हमजा इनको फरहान भाई को, उन्होंने नहीं निकाला, कोई बात नहीं, अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो क्या होता, दीन की हिफाजत तो होती है ना, ईमान की हिफाजत तो होती है ना, राइट, क्या चीज ज्यादा है एक मुसलमान के लिए? अच्छी पढ़ाई, पता नहीं क्या मतलब होता है अच्छी पढ़ाई का, राइट, या ईमान की हिफाजत, मैंने ऐसी की तैसी ईमान की हिफाजत करनी है मैंने अपने औलाद, उन्होंने नहीं निकाला उसको, अब उसका 11 मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब जो है वो जाहिर सी बात है लोग क्या कहते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं करी, अब तो ये किसी काम का नहीं रहा होगा ऑफकोर्स, है ना, अब तो इसको कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिलेगा क्योंकि अच्छी पढ़ाई नहीं करी इसने, हीरा फाउंडेशन मौलवियों के स्कूल के अंदर पढ़ाई करी, इसको तो अब आगे कोई पूछेगा नहीं। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनका एक नहीं दो अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन करवा, टेस्ट भी पास किए और बाकायदा एडमिशन भी हो गया NED यूनिवर्सिटी, जिससे हमारे आरिफ भाई भी पढ़े हैं, राइट, और जो है जिससे हम पढ़े हैं फास्ट, जिसने इब्राहिम भाई भी पढ़े, उधर भी एडमिशन हो गया इधर भी एडमिशन हो गया, उन्होंने जब मुझे बताया ना, मैंने कहा यार आपका तो कहीं भी एडमिशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने तो अच्छी पढ़ाई पढ़ी नहीं। मैं मजाक कर रहा था उनसे, समझा रहा था कि देखो तुमने अल्लाह के खातिर कुर्बानी दी ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें छोड़ा नहीं, ये नहीं हुआ कि तुम कहीं के नहीं रहे। और जिन्होंने इस नाम के ऊपर कि यार इधर क्या करेंगे और ये होगा उधर, अब पता नहीं वहां के उनके बच्चे जाके क्या कर रहे हैं, किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, किस किस्म के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं अच्छी पढ़ाई के नाम। ठीक है, तो ये धोखा होता है शैतान, ये धोखा होता है शैतान, इस धोखे से हमने बचना है। अल्लाह ताला देता है भाई, जितना दीन के नाम पे देता है सवाल ही पैदा नहीं होता दुनिया वालों को इतना मिल सके। ठीक है, एक कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं, ठीक है, आप उनके लिए जो है वो काम करते हैं, आप उनके जो है वो कंप्यूटर मैनेज करते हैं, आप उनका बिजनेस मैनेज करते हैं, वो कंपनी का यार सॉरी मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, मैं आपको तनख्वाह नहीं दे सकती, तो इसमें किसकी बदनामी किसकी है भाई, कंपनी की बदनामी है ना। कंपनी कहे यार सॉरी यार मैं तो, तुमने काम तो मेरा खारा कर दिया लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। ठीक है यार, किस किस्म की कंपनी है, छोड़ो यार इस कंपनी को, किसी और जगह जाओ जहाँ पे तुम्हें तनख्वाह तो मिले ना, कम से कम तुम्हारी मेहनत का अगर तुम्हें मिले, राइट। तो एक दुनिया की काफिर कंपनी जो होती है वो अपने एम्प्लॉय को काम करने के ऊपर पूरी तनख्वाह देती है और उसको अपनी इज्जत समझती है, ना तनख्वाह दे तो बेइज्जती समझती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कि पूरी कायनात को खिलाते हैं, रिस्क देते हैं, कोई उसका काम करे और वो उसको तनख्वाह ना दे, वो उसको जलील और रुसवा कर दे, वो उसको जो है वो भीख मांगने वाला बना दे, व्हाट काइंड ऑफ गॉड इज दिस भाई, किस किस्म के अल्लाह की आप इबादत करते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद असर पड़ेंगे, किस अल्लाह के सामने सजदा करोगे, इसी अल्लाह के सामने सजदा करोगे या किसी और अल्लाह के सामने सजदा करोगे जो कि रिस्क देता है, राइट। तो ये जो दुश्मन है ना हमारा, जिसने कसमें खाई है मैं नहीं इन लोगों को छोड़ूंगा, मैं इनको जहन्नुम में डलवाऊंगा, ये दुश्मन हमें ये बातें कहता है कि तुम अगर अल्लाह का काम करोगे ना तो तुम खाओगे कहां से। ठीक है, हमें कलमा पढ़ के वापस इस्लाम में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि वाकई तो हमने तो अल्लाह पे इनकार कर दिया, राइट, हमने तो नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को एक दुनिया की कंपनी के बराबर भी नहीं समझा। लेकिन शर्त इसके अंदर याद रखें, काम करना पड़ता है, कंपनी भी आपको ठेंगा देगी अगर आप काम नहीं करेंगे, है ना, यही होगा ना, कंपनी आपको फायर कर देगी कि नहीं कर देगी, क्योंकि आपने काम तो किया नहीं, बैठे हुए थे ऐसे तनख्वाह दो तनख्वाह दो तनख्वाह दो, काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी। उसी तरह अल्लाह ताला की भी उसूल है, काम करो जैसे सहाबा काम करते थे, बातें नहीं बनाते थे बैठ करके, ठीक है, बस काम करना शर्त है, हम काम करें और फिर अल्लाह ताला पे एतमाद रखें, तवक्कुल भरोसा रखें, भाई अल्लाह ताला जो है ना वो हमें खाली हाथ हरगिज नहीं छोड़ेंगे, खाली माल पैसा नहीं देते, अल्लाह ताला इज्जत देते हैं जो कि माल पैसे कई से कई गुना ज्यादा बड़ी चीज होती है, इज्जत। ठीक है, अल्लाह ताला हमें अपना बना ले, अल्लाह के काम करने वाले बन जाए, वो आपको तो आवाना है, अलहमदुलिल्लाह।
Recording stopped.